रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लोकतंत्र के पक्ष में सूचना के हक का कार्यान्वयन करते हुए अराजकता को निरुत्साहित करने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। प्रधानमंत्री चीन यात्रा की तैयारी के लिए परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देवबा चीन के लिए प्रस्थान। निर्वाचन आयोग द्वारा इसी मार्ग से 16 गते होने वाले स्थानीयतः उपनिर्वाचन के लिए आज रात 12 बजे से प्रचार प्रसार निषेध और यूक्रेन के ऊर्जा केन्द्रों पर रूस का हमला। अब समाचार विस्तार से। निवेश बोर्ड की आज हुई 60वीं बैठक में बूढ़ी गंडकी समेत विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश के लिए मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में सिंह दरबार में संपन्न बैठक से 341 मेगावाट क्षमता के बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना के लिए रूस 70 अरब 106 मेगावाट क्षमता के जगदुल्लाह अर्ध जलाशय युक्त जल विद्युत परियोजना के लिए रू 23 अरब 59 करोड़ और 210 मेगावाट क्षमता की चैनपुर सेती परियोजना के लिए रू 47 अरब 54 करोड़ का निवेश स्वीकृत करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक से 327 मेगावाट क्षमता की ऊपरी मर्शांगदी और सम्राट सीमेंट कंपनी प्राली का समय सीमा बढ़ा दी गई है। तो वहीं पश्चिम सेती जल विद्युत परियोजना का क्षमता 750 मेगावाट से बढ़ाकर 800 मेगावाट बनाने के हिसाब से म्याद थप तथा चार किला जड़ित क्षेत्र के अनुमति पत्र संशोधन का निर्णय किया है। साथ ही ऊपरी कर्णाली जल विद्युत परियोजना का शेयर परिवर्तन और समझौता पत्र संशोधन का निर्णय किया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि लोकतंत्र के पक्ष में सूचना के हक का कार्यान्वयन करते हुए अराजकता को निरुत्साहित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सूचना आयोग द्वारा आज पेश किए गए आर्थिक वर्ष 2080-81 के 16वें वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आयोग के प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरूंग ने प्रतिवेदन पेश किया। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्रज्ञा सभा ने 12 विभिन्न विधाओं में वैज्ञानिकों विशेषज्ञों और प्राविधिक और प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज प्रधानमंत्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई बैठक ने नास्ट के प्राज्ञ के संयोजकत्व में गठित चयन और मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुरस्कार देने का निर्णय किया गया है। प्रतिष्ठान के वार्षिकोत्सव के अवसर पर सभी विधाओं के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। बैठक में योगदान पर आधारित निर्वृत्तिवरण कार्यान्वयन आर्थिक प्रकाशन नियमावली संशोधन 2066 संशोधन के प्रस्ताव पर अधिक गृह कार्य सहित प्राज्ञ सभा में पेश करने का प्रधानमंत्री ओली ने निर्देश किया। उन्होंने आवश्यक गुणस्तरीय में समय पर काम करने की प्रणाली स्थापित करने का नष्ट के पदाधिकारियों से आग्रह किया। निर्वाचन आयोग ने इसी मार्ग शीर्ष 16 गते होने वाले स्थानीयतः उपनिर्वाचन के प्रचार प्रसार का निषेध अवधि आज रात 12 बजे से शुरू होने की जानकारी दी है। स्थानीय तह के उपनिर्वाचन को स्वच्छ स्वतंत्र निष्पक्ष विश्वसनीय और भयरहित वातावरण में संपन्न करने के लिए निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम मतदान होने के दिन से 48 घंटे पहले से मतगणना समापन न होने तक राजनीतिक दल व उम्मीदवार के पक्ष विपक्ष में किसी भी तरह के प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देवबा चीन के छंदू पहुंची है। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी के मैत्रीपूर्ण निमंत्रणा पर औपचारिक भ्रमण के लिए आज नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए चीन रवाना हुई थी। मंत्री डॉ राणा छंदू में चीन के विदेश मंत्रालय के सिचुआन प्रांतीय डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ली हुचियांग और चीन के लिए नेपाली राजदूत डॉ कृष्ण प्रसाद ओली ने स्वागत किया। ये जानकारी उनके सचिवालय ने दी। भ्रमण के दौरान मंत्री डॉ राणा चीन के विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय भेंटवार्ता करेंगी। चीन के औपचारिक भ्रमण के साथ ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आसन्न चीन भ्रमण की तैयारी के लिए परराष्ट्र मंत्री वोंग चीन पहुंची है। बता दें कि परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा इसी मार्ग शीर्ष 15 गते शनिवार नेपाल वापस लौटेंगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। विशेष अदालत ने सुरक्षण मुद्रण केन्द्र के तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल और निर्देशक सफल श्रेष्ठ को 8 साल कैद, 3,42,22,800 क्लेम्ड अमाउंट भरवाने और उतना ही जुर्माना की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत के अध्यक्ष टेक नारायण कुंवर, न्यायाधीश द्वय खुशी प्रसाद थारू और रितेन्द्र थापा की पीठ ने आज अंतः शुल्क स्टिकर की छपाई संबंधी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार देते हुए पौडेल और श्रेष्ठ को ये सजा सुनाई गई है। बता दें कि इस मामले में अदालत ने तत्कालीन मुख्य सचिव वैकुंठ अर्याल सहित को शफाई दी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सभापति एवं उप प्रधान तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने को बयान के लिए आज काठमांडू लाया गया है। लामिछाने विरुद्ध काठमांडू के स्वर्ण लक्ष्मी सहकारी के बचत अपचलन करने के अभियोग में काठमांडू जिला अदालत द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद बयान के लिए लाया गया है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय कास्की के प्रवक्ता एवं डीएसपी बसंत शर्मा ने दी। बता दें कि पोखरा के सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के सहकारी के रकम ठगी और संगठित अपराध कसूर में बीते कार्तिक 2 गते गिरफ्तार हुए लामिछाने को जिला प्रहरी कार्यालय कास्की के हिरासत में रखकर अनुसंधान किया जा रहा है। रेडियो नेपाल के कार्यकारी निर्देशक अमरध्वज लामा ने पोखरा में रहे रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय गंडकी का अवलोकन किया। आज प्रादेशिक कार्यालय का अवलोकन करते हुए कार्यकारी निर्देशक लामा ने रेडियो नेपाल के साख उच्च बनाने के हिसाब से काम करने का कर्मचारियों को निर्देश किया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था की भावना के अनुरूप संघीयता के आधार पर रेडियो नेपाल की पुनर्संरचना आगे बढ़ी है और आने वाले दिनों में प्रसारण पहुंच और प्रसारण में सुधार किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बुधवार रात किए हमलों में उसके बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने देशभर में इस तरह के हमले किए हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री हरमन हालुशचेंको ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर एक बार फिर से बड़े पैमाने पर दुश्मन के हमले की चपेट में है। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने कहा कि बड़े पैमाने पर किए गए रूसी हमलों के दौरान राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। आज सुबह यूक्रेन की वायुसेना ने चेतावनी दी थी कि रूस देश में अलग अलग जगह हमले कर सकता है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 4 इलाकों में 25 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकतंत्र के पक्ष में सूचना के हक का कार्यान्वयन करते हुए अराजकता को निरुत्साहित करने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। प्रधानमंत्री की चीन यात्रा की तैयारी के लिए परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देवबा चीन के लिए प्रस्थान। निर्वाचन आयोग द्वारा इसी मार्ग शीर्ष 16 गते होने वाले स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए आज रात 12 बजे से प्रचार प्रसार निषेध और यूक्रेन के ऊर्जा केन्द्रों पर रूस का हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।